Good evening, listeners, and welcome to this Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us, you can call us on 2331-4444. 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. To navigate you through today's show, your very own anchors, Subodh Mishra and Sarabjit Kaur.
धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444-2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आकार रस्तोगी. आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
जी धन्यवाद.
पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत.
No reports of dry outs of gas supply at LPG distributorships across the country, says Ministry of Petroleum and Natural Gas. Advises citizens to not panic, assures that government remains committed to maintaining adequate LPG availability. Government directs households with PNG connection to give up their LPG connection with immediate effect, and domestic investors to focus on geopolitical developments and macroeconomic data for Q's next week.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा देश भर में एलपीजी वितरकों के पास गैस आपूर्ति खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं. लोगों को घबराहट से बचने की सलाह दी. सरकार एलपीजी की समुचित उपलब्धता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध. सरकार ने पीएनजी कनेक्शन वाले घरों को तत्काल प्रभाव से अपना एलपीजी कनेक्शन छोड़ने को कहा और अगले सप्ताह देश के निवेशकों का फोकस रहेगा भू राजनीतिक गतिविधियों और आर्थिक आंकड़ों पर.
And before we go any further in the program, Subodh, let's just once again remind our listeners the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
हाँ, और अभी से हमारे कुछ श्रोता इंतजार कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि खबरों पर जाने से पहले हम उनसे बातचीत शुरू कर लेते हैं. महाराष्ट्र से शिवशरण हमारे साथ है. शिवशरण, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
हाँ, मुझे एक एसआईपी चालू करना था.
जी,
आदित्य बिरला या एसबीआई में फ्लेक्सी कैप में, तो कौन सा इसमें अच्छा रहेगा या निपोन का?
शिवशरण जी, मैं कहूंगा कि सबसे पहले आपको यह तय करना चाहिए कि आप कितने समय के लिए पैसे अपने इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, निवेश करना चाह रहे हैं. सबसे पहले आप वहां पे तय कीजिए. और यहां पे मैं मानता हूं कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि मिनिमम 5 साल के लिए है, और अगर आपने इससे पहले अभी कहीं पे भी निवेश नहीं कराए, तो आप शुरुआती तौर पे एक अच्छा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का चुनाव कर सकते हैं, या फिर एक सिंपल प्योर इक्विटी में अगर जाना है तो एक इंडेक्स फंड लीजिए. देखिए, इन दोनों में जो खास बात होती है वो ये होती है, जो एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है वहां पे आपका कुछ पैसा इक्विटी में और कुछ पैसा फिक्स्ड इनकम डेट में लगता है, जिससे कि होता है कि जो जब भी मार्केट गिरता है तो मार्केट से ये फंड आपका कम गिरेगा. लेकिन वहीं पे जब भी मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखना चाहे तो अभी जैसे कि मार्केट थोड़ा सा नीचे गिर रहा है, पिछले एक महीने में सेंसेक्स जो कि एक प्योर इक्विटी हम लोग मान सकते हैं वो कुछ तकरीबन 10% गिर गया, लेकिन वहीं पे एक जो एक एवरेज अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है वो कुछ 6-6.5% गिरा है खाली। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप एक कोई सा भी एक अच्छा अग्रेसिव हाइब्रिड फंड लीजिए और किसी एक एएमसी पे निर्भर ना होकर के एक अच्छा अग्रेसिव हाइब्रिड फंड और उसमें अपना एसआईपी से शुरुआत कीजिए।
जी, और सरबजीत आगे देखें हम कि एलपीजी से जुड़ी एक अच्छी खबर है और बड़ी खबर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के पास गैस आपूर्ति खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। मंत्रालय ने बताया कि एलपीजी बुकिंग्स में गिरावट आई है। 14 मार्च को लगभग 77 लाख बुकिंग्स हुई जबकि 13 मार्च को लगभग 88 लाख बुकिंग्स हुई थी। यह भी बताया गया कि बिहार, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार गैर घरेलू एलपीजी सिलेंडर जारी करने का आदेश दे दिया है। मंत्रालय ने बताया कि वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर भी प्राथमिकता के आधार पर वितरण के लिए राज्य सरकारों के जिम्मे कर दिए गए हैं और अब 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने बताया कि सरकार घरों और आवश्यक क्षेत्रों के लिए समुचित एलपीजी उपलब्धता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
And Subodha, I'd like to further update our listeners. The Union Ministry of Petroleum and Natural Gas has directed households with both piped natural gas, PNG, and liquefied petroleum gas, LPG connections to surrender their LPG connection with immediate effect. In a notification issued yesterday, the ministry said any person having a PNG connection will not be allowed to retain a domestic LPG connection or take refills of LPG cylinders from government oil companies or their authorized distributors. Such consumers are also required to surrender their LPG connection immediately. The order further states that individuals who already have a PNG connection will also not be permitted to obtain a new LPG connection in the future. The government said the step has been taken to prevent duplication of cooking gas supply and to ensure that LPG cylinders remain available for households that do not have access to PNG networks. The notification comes amid disruptions in global fuel supply due to the ongoing crisis in West Asia. And Subodh, I can see that Amit joins us from Mumbai. Amit, welcome to the show. Apna sawal poochhe.
थैंक यू मैडम। एक्सपर्ट से सवाल, ये मेरे दोस्त थे, एक म्यूचुअल फंड में XIR, ये इसका मतलब क्या है? क्या मैं समझूं कि खुद जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसका रिटर्न है क्या साल का? क्योंकि CGR और इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ XIR में, और HDFC का फोकस फंड इस पर ये कैसा है एज अ परफॉर्मेंस? मैं रेडियो पे सुनता हूँ। थैंक यू
अमित जी। देखिए, जो XIRR है और जो CAGR है उन दोनों में बेसिकली मतलब दोनों ही रिटर्न्स है, पर जो एक मेन डिफरेंस है वो ये है, XIRR हम लोग तब कैलकुलेट करते जब मल्टीपल फ्लोज हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आप SIP से निवेश कर रहे हैं तो वहां पे आपका सारा पैसा एक पर्टिकुलर तारीख को नहीं लग रहा बल्कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लग रहा है। तो जो एक XIRR है, जब मल्टीपल फ्लोज हो, या फिर मान लीजिए बीच में आपने कभी अपना पैसा निकाला किसी तारीख पे और फिर बीच में आपने थोड़ा सा और डाल दिया, तो जैसे अगर आप एक किसी तारीख को अपना डेट पे रिटर्न देखेंगे और अगर आप चाहेंगे कि आपको एक एनुलाइज्ड रिटर्न पता चले कि आपके निवेश ने पूरा जितना भी आपको एक रिटर्न जनरेट करके दिया, तो फिर जहां पे भी मल्टीपल फ्लोज होंगे वो XIRR होएगा आपका। और जो CAGR है वहीं पे वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने आज एक साथ 1 लाख रुपए लगा दिए और आज से आप 5 साल के बाद देखते बीच में आपने ना उसमें कुछ पैसे डाले ना आपने उसमें कुछ पैसे निकाले, सीधा 5 साल के बाद देखते कि उसका रिटर्न क्या है, तो वो एक वन पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्टमेंट थी और एक वन पॉइंट ऑफ टाइम पे आप रिडीम करेंगे या निकालेंगे, तो वो जो रिटर्न होगा आपका लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट का वो CAGR होगा। और वहीं अगर इस 5 साल पे आप SIP से बीच बीच में कुछ पैसे डालते रहे और कभी शायद थोड़े बहुत निकाले भी, तो उसका उन सारे कैश फ्लोज के टाइम को इंक्लूड करके जो एक कलेक्टिव रिटर्न आएगा एक्चुअल, वो XIRR कहलाएगा।
जी, आकार भी बातें बहुत सारे हैं और सरबजीत के पास सवाल भी बहुत सारे तैयार हैं, लेकिन एक बहुत बुनियादी बात मैं फिर से चाहता हूं, हम बार बार कार्यक्रम में दोहराते रहते हैं कि अभी जो हालात हैं, हमने देखा कि बाजार काफी गिरा है पिछले दिनों और अभी भी अनिश्चितता का माहौल है, जिस तरह से दुनिया में जो कुछ चल रहा है लगातार, ऐसे में अगर हम देखें, क्योंकि ओवरऑल एशियन मार्केट भी देखते हैं गिरता है, कभी यूएस मार्केट भी अक्सर गिर रहा है, थोड़ा बहुत गिर रहा है, लेकिन हमारे बाजार ज्यादा भी गिरा है, ऐसी हालत में एक तो पहले उनके लिए बताइए जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, क्या उनको डर जाना चाहिए? दूसरा, जो नए निवेशक हैं वो इस समय उनको मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में कदम रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? ये दोनों के लिए बताइए। पहले तो जो जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको इस समय क्या रुख अपनाना चाहिए?
देखिए, आपके लिए सबसे जरूरी है कि इस वक्त आप घबराए ना, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में होता है कि लोग बाग पैनिक कर जाते हैं, अपने पोर्टफोलियो को नीचे गिरते हुए देखते हैं और उनको लगता है कि भैया जो बचा है, जो नुकसान हो गया, लेकिन जो बचा है वो निकालो और यहां से बाहर निकलो। ये सबसे बड़ी गलती रहेगी, क्योंकि अभी जो भी आपके लॉसेज है वो सिर्फ नोशनल है, अगर आप निकालेंगे तो परमानेंट हो जाएंगे। इन्हीं सिचुएशंस के लिए कहा जाता है कि आप अपना एक असेट एलोकेशन बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। तो जो भी अभी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, बिल्कुल ना घबराए, अपना असेट एलोकेशन चेक कीजिए, आप वो फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो एक अपना प्लान बनाइए और उसको फॉलो करें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू रखें। वहीं पे मैं बात करूंगा जिन इन्वेस्टर्स ने अभी तक निवेश नहीं किया है, उनके लिए सही टाइम है कि नहीं। देखिए, जब तक आप इक्विटी में एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 साल या उससे ज्यादा, तो बिल्कुल सही टाइम है। बस आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये कि आपको ये नहीं सोचना कि अभी मार्केट नीचे है और मैं थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर देता हूं और जल्दी ऊपर आ जाएगा तो मैं एक अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर लेता हूं, मेरे को जल्दी फायदा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ टाइम करने के हिसाब से मत सोचिए और ऐसी एक भावना लेकर के मार्केट में पैसे इन्वेस्ट ना कीजिए। और दूसरा ये कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप SIP के जरिए ही करिए, आप लमसम पैसा ना निवेश करें। तो ये दोनों चीजें हैं, बाकी आप अपना निवेश कर सकते हैं।
आकार, वील कम बैक टू यू, बट राइट नाउ वी हैव अ कॉलर फ्रॉम दिल्ली। योगेश जी, अपना सवाल पूछें।
जी नमस्कार आप सभी को। मेरा सवाल ये है, मेरे दो सवाल हैं बेसिकली। एक सवाल तो मेरा ये है कि आजकल मल्टी एसेट फंड को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उसका बहुत नाम सुनने में आ रहा है, लेकिन मल्टी एसेट फंड के साथ में क्या ये एक इनहेरेंट दिक्कत नहीं है कि सारा एक्सपोजर हमारे को एक ही AMC के एक ही फंड में मिल रहा है सारे एसेट क्लासेस का? तो डाइवर्सिफिकेशन जो हम करते हैं अलग अलग फंड में, अलग अलग SIP में, वो कहीं ना कहीं इसमें डाइल्यूट हो जाता है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक्सपेंस रेशियो हमारा डिडक्ट कैसे होता है, वो हम कैसे पता लगा? मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए डाले और उसमें वो कुछ पैसे काट के उसको इन्वेस्ट करते हैं, कुछ उसमें फीस वगैरह काट के, पर एक्सपेंस रेशियो कितना मेरा कब कब काटा जा रहा है उसमें से? क्या मेरे प्रॉफिट में से काटा जा रहा है या वो 1 लाख में से काटा जा रहा है?
योगेश, जो आपका पहला सवाल है मल्टी एसेट फंड्स को लेकर के, देखिए जो मेन रीजन है जिसलिए वो फेमस हो रहे हैं, वो हो रहा है अभी डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि एक मल्टी एसेट फंड में आपको तीनों एसेट क्लासेस मिल जाती है, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और कमोडिटीज, जिसमें कि बहुत हद तक गोल्ड में निवेश होता है। तो एक डाइवर्सिफिकेशन के वजह से आपको उसमें निवेश मिल जाता है। बट आप सही कह रहे हैं, कभी भी देखिए एक AMC में अपना सारा पैसा कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो है डाइवर्सिफिकेशन का जो रूल है ब्रेक हो जाएगा। तो आप अपना ऐसा कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक मल्टी एसेट फंड में पैसे ना लगाए, एक से ज्यादा दो मल्टी एसेट फंड्स में आप अपनी जो भी निवेश करने वाली पूंजी है उनको उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वहीं पर मैं ये कहूंगा कि देखिए इसको ना हमेशा एक पूरे पोर्टफोलियो के एंगल से देखिएगा। एक मल्टी एसेट फंड के अंदर आपका इक्विटी होता है, फिक्स्ड इनकम होता है और गोल्ड होता है। आपको लेकिन एक जो भी आपके पूरे पोर्टफोलियो की कलेक्टिव पिक्चर है उसके हिसाब से देखना है कि टोटल गोल्ड कितना बन रहा है, टोटल फिक्स्ड इनकम कितना बन रहा है, टोटल इक्विटी कितना बन रहा है, ना कि सिर्फ एक मल्टी एसेट फंड जिसमें आप निवेश कर रहे हैं। क्योंकि उसके अलावा आपके पास और हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स, हो सकता है कुछ पैसा आपका FDs में पड़ा है, कुछ आपका एक EPF है, कुछ आपका पैसा PPF में है, क्योंकि वो सारा फिक्स्ड इनकम होगा। और हो सकता है कुछ आपने शेयर्स में निवेश करो या कुछ और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में किया, वो इक्विटी में आएगा। मैं चलता हूं आपके दूसरे सवाल की तरफ, जो कि है एक्सपेंस रेशियो। जो एक्सपेंस रेशियो है ये रोज आना कैलकुलेट होता है, जो एक हमारी डेली बेसिस पे एनएवी कैलकुलेट होती है उसमें ये जो एक्सपेंस है ये ऑलरेडी एडजस्टेड होता है। तो ऐसा नहीं होता कि जब आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो पहले उसमें से कुछ पैसा रख लिया जाएगा या बाद में कुछ पैसा काटा जाएगा। ये डेली बेसिस पे जो एक एनएवी है उसमें आपका एडजस्ट होता रहता है।
जी, अगले कॉलर है जयपुर से जितेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
हाँ सर, जैसे मतलब ये देखा मार्केट में 3-4 साल से मैं सुन रहा हूँ, तो म्यूचुअल फंड के लिए धीरेन्द्र जी भी, आप लोग भी, स्नेहा मैडम भी, सभी लोग जैसे बोलते कि 1-2 फंड से काम चल जाता है। तो ठीक है, हमारा मल्टी कैप फंड चल रहा है महिंद्रा मनु लाइफ में, तो अभी मार्केट थोड़ा सा डाउन है तो मैं उसमें कुछ और एडिशन करना चाहता हूँ तो शायद कर ही सकता हूँ। ठीक है, एक ये हो गया मेरा आपसे राय लेने का। और दूसरा है कि जैसे सेक्टोरियल फंड से बचना चाहिए, थर्मेटिक फंड से आप लोग बोलते हैं, लेकिन हम थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, हम थोड़ा सा मेरी इच्छा है। तो जैसे अभी लोग बता रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, मेटल सेक्टर में थोड़ा, तो क्या म्यूचुअल फंड में डिफेंस सेक्टर और मेटल सेक्टर इस टाइप का फर्मा में हम क्या ले लें, थोड़ा बहुत हल्का सा, ज्यादा नहीं, SIP नहीं, 5-6 महीने SIP करके बंद कर दिया, लमसम समझिए।
जितेंद्र जी देखिए, जो सबसे पहले आपका सवाल है कि 1-2 म्यूचुअल फंड्स में ही है उसमें, और महिंद्रा मनुलाइफ के में आप और पैसे डाले ना डाले, देखिए मेरी सलाह रहेगी कि ये डिपेंड करता है कि आपका जो एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना है। अगर ऐसा है कि बहुत ही एक छोटा सा अमाउंट है जो ऑनगोइंग बेसिस पे जा रहा है कि 1-2 हजार रुपये, तो एक फंड काफी है, क्योंकि एक फंड के अंदर भी जो एक पोर्टफोलियो होता है वो लगभग कम से कम 30-40-50 स्टॉक्स का होता है, तो आपका पैसा ऑलरेडी उनमें डाइवर्सिफाई हो रहा है। वहीं पर अगर आप थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट निवेश कर रहे हैं, मान लीजिए 20-25 हजार रुपए कर रहे हैं, तो आप उनको बेशक 2-3 फंड्स के अंदर बांट सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा ठीक रहेगा। आते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ, जो कि था सेक्टोरल फंड्स को लेकर के। देखिए, अगर आप किसी एक सेक्टर की तरफ बहुत ज्यादा टिल्टेड है, देखिए सबसे पहले तो जो भी आपका मल्टी कैप फंड है और एक फ्लेक्सी कैप फंड है, ऐसा नहीं है कि ये इन सेक्टर्स में निवेश नहीं कर रहे, इनका कुछ पैसा फार्मा में भी जाएगा, इनका कुछ पैसा टेक में भी जाएगा, तो हर जगह हर सेक्टर में आपका कुछ कुछ पैसा ऑलरेडी निवेश हो रहा है। आप इनका पोर्टफोलियो खोल के देखेंगे तो वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होगा। उसके ऊपर अगर आप कुछ एडिशनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप अपना बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट रखें, मे बी पोर्टफोलियो का 5%, जिसको आप एक फंड एलोकेशन का नाम दे सकते हैं, और आप उस सेक्टर में निवेश करिए जहां पर आपको लगता है आप बहुत खुद कॉन्फिडेंट है कि या ये तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन वहीं पर साथ में मैं ये कहूंगा कि आप अपना जो होराइजन है उसको यहां पे सिर्फ 5 साल ना रखें, कम से कम 7-10 साल रखें, और लमसम जैसे कि आप कह रहे थे निवेश ना करें। अगर एक आपके पास कुछ पैसा है भी कि आपको बस वही करना है, उसको अगले 6-12 महीने में तोड़ तोड़ के उसमें लगाएं।
लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम नोएडा। शिवम जी, अपना सवाल पूछे।
जी नमस्कार सर।
नमस्कार
सर, मेरा सवाल ये है सर, मैं लास्ट 1.5 साल से सुकन्या समृद्धि योजना में वो 5,000 पर मंथ SIP कर रहा हूँ सर। अभी सर मैं म्यूचुअल फंड में देख रहा हूँ सर, उस वो 21 ईयर्स पीरियड के लिए सर म्यूचुअल फंड काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है सर, तो मैं इसको क्विट करने की सोच रहा हूँ सर, सुकन्या समृद्धि योजना को, तो क्या ये मेरा डिसीजन सही रहेगा क्या सर? हालांकि इसमें वो टैक्स भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड में टैक्स वैक्स लगने के बाद भी वो म्यूचुअल फंड ही जीत रहा है सर, वो टाइम पीरियड इतना है, तो इसलिए मैं क्या मेरा ही डिसीजन सही है सर, इसको हटा के मैं म्यूचुअल फंड में ही करूँ, टाइम ज्यादा है ना सर इसलिए।
शिवम जी देखिए, जो सुकन्या समृद्धि योजना और म्यूचुअल फंड्स में है, मैं मानता हूँ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, ये दोनों बहुत ही एक अलग चीज है। इनका जो एक बेसिक इनहेरेंट नेचर होता है, अंडरलाइंग एसेट क्लास होता है, वही डिफरेंट है। जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो फिक्स्ड इनकम है कम्प्लीटली, और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एक बहुत ही अच्छी स्कीम है सरकार द्वारा, जिसमें आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है, लेकिन वो आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाएगा। लेकिन एक लंबे समय में, जैसे कि आपने एकदम सही देखा है, अगर आप रिटर्न्स कंपेयर करेंगे 15 साल, 20 साल, 21 साल में, तो फिर वो डेफिनेटली आपको एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में ज्यादा मिलेंगे, लेकिन वहीं पे जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होएगा वहां पे आपको काफी ज्यादा ऊपर नीचे वोलेटिलिटी भी मिलेगी। वहां पे सुकन्या समृद्धि की तरह आपकी एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, वहां पे हो सकता है आपका कभी मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाए, हो सकता है कुछ थोड़े समय के लिए वो नीचे गिर के 90 पे भी आ जाए, बट ऐसा कभी सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं रहेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप दोनों का एक मिक्सचर यूज करें, थोड़ा सा अमाउंट फिक्स्ड इनकम का रखें, मे बी आप अगर 5,000 कर रहे हैं तो 5,000 ना करके कुछ 1,500 रुपए या जो भी आपको सही लगता है 20-30% के हिसाब से उतना आप सुकन्या समृद्धि योजना में डालते रहे, और बाकी का पैसा आप अपने किसी एक अच्छे इक्विटी इंडेक्स फंड में शुरुआती तौर पे निवेश करना शुरू कर सकते हैं।
हाँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की बात जहां तक आती है तो हमेशा बाजार से जुड़ा हुआ रिस्क तो उसमें है ही।
बिल्कुल बिल्कुल।
और अगले कॉलर है दिल्ली से रवि, स्वागत है आपका, सवाल पूछे। रवि अब हमारी बात सुन पा रहे हैं? लगता है रवि के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, और देखते हैं अगली खबर पर नजर डालते हैं। भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के आर्थिक प्रभाव के कारण मार्च के पहले 2 हफ्तों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 52,704 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने इसी अवधि में भारतीय ऋण बाजार से भी 889 करोड़ रुपए निकाले हैं। इससे मार्च के पहले पखवाड़े में भारतीय पूंजी बाजार से एफपीआई का कुल आउटफ्लो 60,269 करोड़ रुपए हो गया। फरवरी में एफपीआई द्वारा किए गए मजबूत निवेश के बाद यह बिकवाली एक बड़ा झटका है। फरवरी में एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार में 22,615 करोड़ रुपए का निवेश किया था। ये पिछले 17 महीनों में सबसे बड़ा मासिक निवेश था।
And Akar, we like to ask you here that, you know, there's good news that there are no dryouts of gas supply at LPG distributorships across the country. But yes, the conflict in the Middle East has disrupted energy supplies and created volatility in global oil and gas markets. On the other hand, you know, in the same breath, it's being said that volatility is the natural feature of markets. Right. Now, in the backdrop of this, you know, keeping this assumption in mind, how ready is the mutual fund industry to face these turbulent times?
See, this is not the first time that we have been facing turbulent times. And, you know, we have seen many hiccups in the past, you know, which have brought in volatility. And here, I believe mutual funds are definitely prepared for that, because, you know, all the fund managers are professionals, and any experienced fund manager would have seen many, many, you know, such instances or phases wherein, you know, volatility have been there. But here it is the main role, and I would say it is important for the investor to just not panic and, you know, keep some fixed income allocation in the required proportion in their portfolio.
Okay, let's connect with our next caller from Bhopal. शंकर जी अपना सवाल पूछें। आई बिलीव वी हैव लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद शंकर जी।
अगली खबर पे चलें।
जी, टॉप ऑफिशियल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना टुडे लॉन्च्ड अ न्यू राउंड ऑफ ट्रेड टॉक्स बिफोर अ समिट बिटवीन देयर प्रेसिडेंट्स डोनाल्ड ट्रंप एंड शी जिनपिंग एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन बीजिंग लेटर दिस मंथ। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन मेट चाइनीज वाइस प्रीमियर ही लिफिंग टुडे एट द पेरिस हेडक्वार्टर्स of the Organization for Economic Cooperation and Development to hash out trade issues between the world's two largest economies. The discussions are expected to focus on shifting US tariffs, the flow of Chinese-produced rare earth minerals and magnets to US buyers, the US high-tech export controls, and Chinese purchases of US agricultural products. The two-day meeting in Paris is being seen as setting the stage for President Trump's meeting with his Chinese counterpart, Xi. After witnessing another turbulent week, investors will continue to monitor developments in West Asia and their impact in the coming days on global shipping and energy markets for further direction. In domestic markets, sentiment will largely be shaped by ongoing global developments and macroeconomic indicators, including the wholesale price index, trade and core industries data due this week. The periodic labor force survey, the primary source of data on employment and unemployment conditions in the country, is also set to be released tomorrow. Globally, crude oil prices will be a major factor influencing market sentiment. Also, the world's leading central banks will announce their interest rate discussions amid a rapidly changing backdrop. The US Federal Reserve, Fed, European Central Bank, Bank of England, and Bank of Japan are all set to announce interest rate decisions this week.
Jee.
So big decisions, you know, on the anvil. And what effect do you see in the mutual fund industry in the backdrop of these discussions, Akar? We'd like to hear from you.
So I would say, I mean, it is not important for a retail investor to, you know, actually go into the depth that how will they impact, because, you know, all the changes that whatever happen will bring just short-term results, and all the professional fund managers, they know their job. I mean, what to do exactly, and, you know, which stock when to buy and how to keep your portfolio intact. So I don't see any actionable for a retail investor. So they can continue with their investments.
So taking the discussion just a little further this point, you know, how in these turbulent times, in comparison to an equity fund, how relevant is investment in funds like arbitrage funds, liquid and overnight funds, or ultra short duration funds?
So I would say all these are completely different types of funds. So if you talk about just liquid fund and an overnight fund, they are completely fixed income funds. And more so, you know, their role is to protect your capital when you need them within a few months or within a few weeks, or in the case of overnight, within a few days as well.
So the time horizon is of great importance here.
Yes, yes. I mean, they are meant when you want your capital to be safe, and, you know, the capital protection is of utmost priority while getting some optimization in the returns. Okay. At the same time, arbitrage funds are a good alternative for liquid funds with a little tax efficiency. So they are mostly used by HNIs, but then they won't be as stable as a liquid fund. And, you know, maybe you can park your money if your horizon is for more than a year. They will bring tax efficiency. But, you know, on a smaller number of days, they may not be that stable like a liquid fund.
All right. Moving on to the next big story of the day. The central government has amended the rules governing minimum public shareholding, introducing a graded framework that allows large companies to offer a smaller portion of shares to the public at the time of their initial public offering, IPO. The changes were notified on Friday through the Securities Contracts Regulation Amendment Rules 2026, issued by the Ministry of Finance under the Securities Contracts Regulation Act 1956. The revised framework introduces a tiered structure based on the size of a company's post-issue capital calculated at the public offer. The objective is to make it easier for very large companies to go public while ensuring that public shareholding gradually rises to the standard 25% level. Companies with post-issue capital above 4,000 crore rupees but up to 50,000 crore rupees will be required to offer at least 10% of their shares at listing and must raise public shareholding to 25% within 3 years in a manner laid out by the Securities and Exchange Board of India. The rules provide even more flexibility for very large companies. Firms with post-issue capital above 1 lakh crore rupees but up to 5 lakh crore rupees will have to offer shares equivalent to at least 6,250 crore rupees and maintain a minimum public shareholding of 2.75% at the time of listing. Meanwhile, companies with post-issue capital exceeding 5 lakh crore rupees will need to offer shares equivalent to at least 15,000 crore rupees and maintain a minimum public shareholding of 1% at the time of listing.
एक चलते चलते आकार से एक और सलाह ले लें कि अब जो मार्केट अचानक हम देख रहे हैं, किसी दिन 1.5% गिर रहा है, किसी दिन 2% गिर रहा है, क्या ऐसे डिप्स पर हम म्यूचुअल फंड में थोड़ी बहुत भरपाई कर सकते हैं, थोड़ी यूनिट्स और खरीद कर रख सकते हैं?
देखिए, जब तक कि आपकी इंटेंशन ये नहीं है कि मैं टाइम करके एक जल्दी से मुनाफा कमा लूंगा, तो आप बिल्कुल कर
लंबे
सकते
समय के लिए अगर
हाँ लंबे समय के लिए अगर कुछ पैसा आपके पास एक्स्ट्रा
यूनिट्स
रखा
की
है, तो
भरपाई कर ले हम
जरूर करिए बट लंबे समय के लिए निवेश
जी। आकार मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बिफोर वी रैप अप, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। No reports of dryouts of gas supply at LPG distributorships across the country, says Ministry of Petroleum and Natural Gas. Advises citizens to not panic, assures that government remains committed to maintaining adequate LPG availability. Government directs households with PNG connection to give up their LPG connection with immediate effect. and domestic investors to focus on geopolitical developments and macroeconomic data for Q's next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
Market Mantra.